इन्हीं सब चीज को आप विश्लेषण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी पुरी धाम में अपने भक्तों को उपदेश कुछ दिए आविष्ट होकर के, और उसको स्वरूप दामोदर आय रामानंद इत्यादि भक्तों ने सुना, हमारे इन्होंने गोविंद इत्यादि ने सुना। जब परम भाव आविष्ट हो जाते दूसरों को उपदेश और उनको सुन करके रूप गोस्वामी जी उन लोगों के मुख से सुने प्रतिकूल भावों को और अनुकूल भावों को, और सुन करके हृदयंगम किया और हृदयंगम करके उपदेश अमृत में लिखा। अनुकूल कैसे ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल कैसे दूर करेंगे, इसलिए उसका नाम है उपदेश अमृतम। इसलिए उपदेश अमृत में अमृत कोई चीज है ना, अमृत को पीने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, साधन हैं, उनको ग्रहण करना पड़ेगा। और उस अमृत को ले, अमृत जितने परिमाण में हम लेंगे उतने ही परिमाण में हमारे जो दुर्गुण इत्यादि जो कुछ दोष थे वो सब दूर होंगे। अमृत आया नहीं कैसे हो जाएगा, इसलिए उस उपदेश के द्वारा बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं। राधारमण के कोई गोस्वामी जी, राधारमण ही नाम, उनके चरणों में रह करके उपदेश रूप गोस्वामी के सुन करके उस पर विचार किया और उन्होंने उसकी टीका लिखी, और उसके बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उस पर टीका लिखी, और प्रभुपाद जी ने उस पर अनुवृत्ति टीका उस पर। इन सब समझने के लिए इन सब की आवश्यकता है। तो पहला क्या है, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा उद्रोपस्त बेगम एतान बेगान जब विषहेत धीर सर्वम पृथ्वी सशिष्य। यदि कल्याण चाहते हो, समृत को पीना चाहते हो, तो भाई पहला ये करो, पूतना में ये सारे दुर्गुण हैं, सारे दुर्गुण साधक की प्रथम अवस्था में बहिर्मुखता से जो आ रहे हैं, कुछ संतों के शुद्ध भक्तों के वैष्णवों से कुछ सुना और सुन करके कृष्ण के प्रति थोड़ी सी सेवा की वासना हृदय में आई, यहां तक तो आई, किंतु दुर्गुण उनके जितने थे बहिर्मुखता इत्यादि सभी उसमें ही विद्यमान है। कुछ उन्मुखता बस यही आई है कि अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, ये कैसे जीव सुखी रह सकता है बिना कृष्ण भजन के, उनकी सेवा से नहीं होगा, इतना तो आया है। या पूर्व जन्म का संस्कार वैसा हो तो कृष्ण के प्रति कुछ रुचि इत्यादि आ सकती है, किंतु उसमें दुर्गुण अभी सभी हैं, बहिर्मुखता है, ये जितने हैं मन वेग क्रोध वेग जीवा वेग उदर वेग वाक वेग उपस्थ वेग इत्यादि सभी हैं। इसे सेवा की वासना कैसे पुष्ट होगी, इसलिए महाप्रभु ने जो विचारधारा दिखलाया रूप गोस्वामी को, उन्होंने उसमें लिखा और उसको विचार किया। इसके लिए बतला रहे हैं ये वेग जो हैं, कितना बजा, 6:30, ये वेग 6 है, वाचो बेगम मनसः क्रोध जीवा उदर उपस्थ, 6 में इनके 3 विभाग हैं। कौन कौन, कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक कौन कौन है बतलाओ, बस उमा बतला सकते, ये फटफट करती है, बतलाओ। और बोलो, जीवा वेग उदर वेग और उपस्थ, ये तीन काइक है शरीर से। जीवा बेग माने क्या? जीवा का बेग, जीवा के बेग भी दो प्रकार के हैं ना, एक तो रसास्वादन करना जीवा से और एक बोली के ऊपर में कंट्रोल नहीं होना। तो इसलिए जो रसास्वादन करने की लालसा है ये जीवा बेग आया काइक में ना, और उधर का बेग खाएंगे खूब, ये उधर का बेग, और उपस्थ स्त्री पुरुष की संग की लालसा ये उपस्थ बेग, ये तीनों काइक बेग हैं। ग्रहण करना बड़ा भारी कठिन है, बल्कि हम उसके अनुकूल काम करते हैं कभी कभी। ये स्त्री पुरुष दोनों में ही है। स्त्रियों में अभिव्यक्ति जरा लज्जा से नहीं कम होती, पुरुष में इसमें हो जाता है। खूब सावधान रहे, आने तो ये चौपट कर देगा एकदम। विशेष करके ये चीज को समझो, जो मैंने दीक्षा और हरिनाम के समय में गुरु को जो हृदय को अर्पण कर दिया है और उस अर्पित की हुई चीज को जो दे दिया है और उसको फिर हम दूसरे को दे देते हैं, तो ये कितना बड़ा भारी धोखा और अपराध है। खबरदार ऐसा मत करो, इसको याद रखो। गुरु जी को दे दिया, ये गुरु जी मैं आपकी जूती हो गया, और फिर उसे लेकर के दूसरों को दे देते हैं, मैं तुम्हारे पैरों की जूती हो गया। ऐसा मत करो। अच्छा, मन का वेग दो, क्रोध वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग, ये दोनों। मन के द्वारा भगवत इतर वस्तुओं का चिंतन करना और क्रोध, ये दो है मानसिक। और बाच वेग, ये बाचिक वेग। कौन सा बाचिक वेग? अंड बंड जो कुछ आए बिना कंट्रोल का, उसको बिना लाइसेंस के जो इच्छा आए इसको कह दिया। भगवत कथा से इतर जितनी भी बातें हैं ये सब क्या है? बाचो वेग है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको कैसे दमन करेंगे, इन सब के लिए विचार किया है। हम लोग भजन करते हैं किंतु उससे विचार, जो कभी इच्छा होती है गुरु के संबंध में भी बोल देते हैं। इफ यू आर गोइंग टू साधक एंड यू हैव टेकन दीक्षा एंड मंत्र एंड एवरीथिंग एंड डूइंग चैंटिंग रिमेम, बट येट वी हैव नो कंट्रोल ऑन टन और माइंड और एनीथिंग। अरे यदि तुम ही विचार करके उनका देखेगा तो वही तुम ही गुरु हो गया, वो चेला हो गया गुरु। एक समय प्रभुपाद जी बरांडे में टहल रहे, प्रभुपाद मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती और पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, उनसे बोले कि ये आपके जितने अभी सन्यासी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं आप लोग भिक्षा नहीं जाएंगे। और भक्ति विलास तीर्थ महाराज उस समय में कुंज बिहारी थे मैनेजर, उनको एक पैसा नहीं देंगे, वो अपने लड़के को अपने बिस्त्री को या दूसरों को रुपया भेजते हैं, इसलिए हम लोग इसके लिए जाते हैं भिक्षा करने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, और देना बंद कर दिया सब लोगों ने मिल करके। और प्रभुपाद जी को यह बात बतलाने के लिए, प्रभुपाद जी जान करके भी नहीं बोल रहे, सभी कुछ जान रहे हैं समझ रहे हैं किंतु नहीं, जो जानेगा नहीं तो वो गुरु कैसे समझते हैं, किंतु किसी कारण से उसको सुधारने का अवकाश दे करके नहीं बोल रहे। जब श्रीधर महाराज ने कहा तुम्हारा जी सिर, तुम्हारा सिर की माथा कपाल पुड़ी छे, उदय तो पुड़ी छे, तुम्हारे कपाल पुड़ लो क्यों, तो तुम ही लोग गुरु क्यों नहीं हो गया, हमको गुरु क्यों बनाए? परमार्थ बड़ा है ना अर्थ बड़ा है, तुम परमार्थ के लिए अर्थ को छोड़ करके आए, फिर अर्थ की चिंता क्यों कर रहा है? एक काम को मैनेजर के रूप में उसको ये विषय कर रहा है, विषय इत्यादि हमारी रक्षा कर रहा है, उसको हमने अर्थ दे दिया कोई थोड़ा सा, और उसके द्वारा परमार्थ दूसरों को करा रहा हूं, तुम लोगों का समय में बचा रहा हूं, तुम लोग परमार्थ में बुद्धि दो, तो तुम्हारे सती सती कपाल पूरे अर्थजन अर्थ छड़े दिए हुए आबार अर्थ मध्य राज अर्थ को छोड़ करके भी अर्थ में लगा हुआ है। हमारी बात को तुम लोग समझा नहीं, अभी हम भी कह रहे हैं किंतु लोग समझेंगे कि नहीं, कितने लोग नहीं समझेंगे। किसी को अर्थ दिया जाए, किसी को परमार्थ, दोनों में कौन बड़ा है? तो हम किसी को परमार्थ देने प्रभुपाद जी करें और किसी को अर्थ, तो अर्थ देने वाला तो बहुत नीचा है, तुम उसके लिए क्यों मर रहा है? किसी को हमने एक फूटी हुई कौड़ी दी और किसी को हमने चिंतामणि दी, तो तुम चिंतामणि छोड़ करके उस कौड़ी फूटी हुई के लिए तू रो रहा है जैसे हमको गुरु जी ने वो नहीं दिया और उसको दे रहे हैं फूटी कौड़ी। तुम इसलिए क्यों नहीं रोता है जैसे उसको फूटी कौड़ी क्यों दे रहे हैं, हमारे जैसा उसको क्यों नहीं? तब तो एक बात थी, हम साधक लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, इन चीजों को समझना चाहिए। जीवा द्वारा शब्द उच्चारण और स्वादन एक द्वितीय क्रिया है, एक रसास्वादन जीवा के द्वारा और एक शब्द उच्चारण, दोनों कंट्रोल होना चाहिए। एक आ गया वाचो वेग में और दूसरा आ गया कायिक में, कायिक में आ गया। बाक वेग, बाक उच्चारणकारी हम लोग भूल जाते हैं, बाक को कंट्रोल करके बोलो। कृष्ण सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए जो बातचीत है वो तो भक्ति है, वो बाक वेग नहीं है। एक आदमी निरंतर हरि कथा कह रहा है निस्वार्थ रूप में, वो बात वेग नहीं है। किंतु अपने स्वार्थ के लिए, जागतिक स्वार्थ के लिए कृष्ण कथा को छोड़ करके संसारिक बातें कर रहे हैं, ये बाचो वेग है। किंतु गुरु और वैष्णव उन्नत जो हैं, कहेंगे ये झाड़ू लगाओ ये तो विषय की बात है, किंतु ये हो जाएगी सेवा की परम उत्कृष्टता, इसको भी समझना चाहिए। उनका प्रत्येक व्यवहार और उनकी प्रत्येक कथा ही कृष्ण की सेवा है, इसको भी समझो। हम साधक लोग कभी, कनिष्ठ लोग हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। इसी को दास गोस्वामी ने असद वार्ता कहा है, यह भक्ति का अत्यंत घोर विरोधी है। असद वार्ता विश्या विस्तृज मलसी सर्वस्व हरिणी, किसी कभी भी ऐसी बात, इसी से झगड़ा हो जाता है, इसी से वैष्णवों की निंदा हो जाती है, कभी कभी गुरु जी की भी निंदा हो जाती है, इसलिए सावधान इसके द्वारा हो। हम कल से दोनों बातों को विचार करेंगे, यशोदा मैया का अनुराग कैसे उस लीला से बढ़ा और किस प्रकार से पूतना का जो बाहरी भाव है उसको हटाना चाहिए, कैसे होगा। इसलिए अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल आज यही तक रहेगी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो।